गाथा में आप सुन रहे हैं ममता कालिया की कहानी बोलने वाली औरत। ये झाड़ू सीधा किसने खड़े की? बीजी ने त्योरी चढ़ाकर विकट मुद्रा में पूछा। जवाब न मिलने पर उन्होंने मीरा को धमकाया, इस तरह फिर कभी झाड़ू की तो। वे कहना चाहती थी कि मीरा को काम से निकाल देंगी, पर उन्हें पता था कि नौकरानी कितनी मुश्किल से मिलती है। फिर मीरा तो वैसे भी हमेशा छोड़ू छोड़ू मुद्रा में रहती थी। मैंने नहीं रखी, मीरा ने ऐंठ कर जवाब दिया। मैंने रखी थी बीजी, शिखा ने आंगन में आते हुए कहा। क्यों रखी थी? तुझे इतना नहीं मालूम कि झाड़ू खड़ी रखने में दलिद्दर आता है, कर्ज बढ़ता है, रोग जड़ पकड़ लेता है? ये तो मैंने कभी नहीं सुना। जाने कौन गांव की है तू, माँ के घर से कुछ भी तो सीख कर नहीं आई। काके का काम वैसे ही ढीला चल रहा है, तू और झाड़ू खड़ी रख, सीख है तेरी। मेरा ख्याल है झाड़ू गुसल खाने के बीचों बीच भीगती हुई पसरी हुई छोड़ देने से दलिद्दर आ सकता है। तीलियां गल जाती हैं, रस्सी ढीली पड़ जाती है और गंदी भी कितनी लगती है। आज तो मैंने माफ कर दिया, फिर कभी झाड़ू खड़ी ना मिले, समझी? इस बात में कोई तुक नहीं है बीजी, झाड़ू कैसे भी रखी जा सकती है। बीजी झुंझला गई। कैसी जाहिल और जिद्दी लड़की ले आया है काका, लाख बार कहा था इस कुदेसिन से ब्याह ना कर, पर नहीं, उसके सिर पर तो भूत सवार था। शिखा को हंसी आ गई। बीजी अपने को बहुत सही और समझदार मानती हैं, जबकि अक्सर उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता। उसे हंसते देखकर बीजी का खून खौल गया। इसे तो बिल्कुल अकल नहीं है, उन्होंने मीरा से कहा। बीजी चाय पियेंगी? शिखा ने पूछा। बीजी उसकी तरफ पीट करके बैठी रहीं। शिखा की बात का जवाब देना वे जरूरी नहीं समझती। वैसे भी उनका ख्याल था कि शिखा के स्वर में खुशामद की कमी रहती है। शिखा ने चाय का गिलास उनके आगे रखा तो वे भड़क गईं।
वैसे ही मेरा कब्ज के मारे बुरा हाल है, तू चाय पिला 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 कर मुझे मार डालना चाहती है।
शिखा ने और बहस करना स्थगित किया और अपना चाय का गिलास लेकर कमरे में चली गई। शिखा का शौहर कपिल अपने घर वालों से इन अर्थों में भिन्न था कि आम तौर पर उसका सोचने का एक मौलिक तरीका था। शादी के ख्याल से जब उसने अपने आसपास देखा तो कॉलेज में उसे अपने से 2 साल जूनियर बीएससी में पढ़ती शिखा अच्छी लगी थी। सबसे पहली बात तो ये थी कि वो उन सब औरतों से एकदम अलग थी जो उसने परिवार और अपने परिवेश में देखी थी। शिखा का पूरा नाम दीप शिखा था, लेकिन कोई नाम पूछता तो वो महज नाम नहीं बताती। मेरे माता पिता ने मेरा नाम गलत रखा है, मैं दीप शिखा नहीं अग्निशिखा हूं, वो कहती। अग्निशिखा की तरह ही वो हमेशा प्रज्वलित रहती, कभी किसी बात पर, कभी किसी सवाल पर, तब उसकी तेजी देखने लायक होती। उसकी वक्रता से प्रभावित होकर कपिल ने सोचा वो शिखा को पा कर रहेगा। पढ़ाई के साथ साथ वो पिता के व्यवसाय में भी लगा था, इसलिए शादी से पहले नौकरी ढूंढने की उसे कोई जरूरत नहीं थी। बिना किसी आडंबर, दहेज या नखरे के एक सादे समारोह में वे विवाह सूत्र में बंध गए। शिखा उसकी आत्मनिर्भरता, खूबसूरती और स्वतंत्र सोच से प्रभावित हुई। तब उसे ये नहीं पता था कि प्रेम और विवाह 2 अलग-अलग संसार हैं, एक में भावना और दूसरे में व्यवहार की जरूरत होती है। दुनिया भर में विवाहित औरतों का केवल एक स्वरूप होता है, उन्हें सहमति प्रधान जीवन जीना होता है। अपने घर की कारा में वे कैद रहती हैं, हर एक की दिनचर्या में अपनी अपनी तरह की समरसता रहती है, हर एक के चेहरे पर अपनी अपनी तरह की ऊब। हर घर का एक ढर्रा है जिसमें आपको फिट होना ही होना है। कुछ औरतें इस ऊब पर श्रृंगार का मुलम्मा चढ़ा लेती हैं, पर उनके श्रृंगार में एक रस्ता होती है। शिखा अंदाज लगाती, सामने वाली घर की नीता ने आज कौन सी साड़ी पहनी होगी, और प्रायः उसका अंदाज ठीक निकलता। यही हाल लिपस्टिक के रंग और बालों की स्टाइल का था। दुख की बात यही थी कि अधिकांश औरतों को इस ऊब और कैद की कोई चेतना नहीं थी, वे रोज सुबह 9:30 बजे सासों, नौकरों, नौकरानियों, बच्चों, माली और कुत्तों के घरों में छोड़ दी जाती अपना दिन तमाम करने के लिए। वही लंच पर पति का इंतजार, टीवी पर बेमतलब कार्यक्रमों का देखना और घर भर के नाश्ता, खाना, नखरों की नोक पलक संवारना, चिकनी महिला पत्रिकाओं के पन्ने पलटना, दोपहर को सोना, सजे हुए घर को कुछ और सजाना, सास की जी हुजूरी करना और अंत में रात को एक जड़ नींद में लुढ़क जाना।